आज की बात। श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे मीडिया की कार्यशैली पर। भारत में मीडिया की स्थिति और कार्यशैली पर खुद मीडिया जगत से जुड़े हुए लोग सवाल उठा रहे हैं। वैसे ये भी हकीकत है कि मीडिया की भूमिका पर सवाल उठना कोई नई बात नहीं है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह भी अपने ज़माने में मीडिया की आज़ादी और निष्पक्षता को लेकर गहरी चिंता जता चुके हैं। कुछ विचारक तो यहाँ तक कहते हैं कि मीडिया का कोई सुनहरा दौर रहा ही नहीं, लेकिन कुछ पत्रकारिता विशेषज्ञों का कहना है कि पहले हालात बेहतर थे, जैसे जैसे अन्य विभागों की तरह मीडिया का उद्योगीकरण हुआ और वित्तीयकरण हुआ, मीडिया की हालत खराब होती गई। मीडिया की चमक दमक तो बढ़ गई, उसका आकार बढ़ गया, उसकी आवाज़ का दायरा बढ़ गया, लेकिन उसकी निष्पक्षता कम हुई। हाल ही में इसी विषय पर एक महत्वपूर्ण बयान भारत के वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने दिया। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि किस तरह से राजनीति मीडिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि मीडिया में वो लोग मजबूत स्थिति में हैं जिनके साथ संस्थान खड़ा है।
कुछ देर बाद क्या हुआ, अमित शाह का फोन आया। मैंने एकदम फैक्चुअल है, इसमें कोई यो नहीं है, कोट कर रहे हैं। अमित शाह का फोन आया, उसने हमसे कहा, प्रसून जी आप गलत सलत खबर देते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो गए, मतलब वो हमसे कह रहे थे कि आप शिवसेना की तरफ से बोल रहे हैं, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पॉलिटिशियन चाहते हैं कि हम उसके फील्ड में आ जाएं, और उस ब्लैक मनी और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिमिनल बना हुआ है, जिसमें चुनाव आपको भी भ्रम है कि आप वोट दे रहे हैं, मुश्किल तो ये है। अरे जनाब, आपके वोट से कुछ नहीं हो रहा, आप समझ नहीं रहे हम बार बार क्यों बोल रहे हैं 2014 के बाद स्थिति बदल गई है। हमारा ये कहना है कि हर इंस्टीट्यूशन को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपके इलाके का थानेदार अगर काम ना करे, CBI जांच ना करे, सुप्रीम कोर्ट काम ना करे, CVC अपने तरीके से काम करने लगे, मेरा कहना है कि इंस्टीट्यूशन काम करेगा तो सिस्टम रहेगा, और सिस्टम रहेगा तो देश में डेमोक्रेसी रहेगी। हम तो बड़ी छोटी सी आ जा रहे हैं, इसमें अगर हर कोई चुनाव ही लड़ने लगे तो इसका मतलब एक है कि आपके जहन में कुछ ऐसा है कि शायद ये लोग गॉड गिफ्टेड हैं, चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे, चीज़ें ठीक कर देंगे। हमारा ये कहना है कि जिस दिन यहाँ के लोग खड़े हो जाएंगे, उस दिन हमारे जैसा कोई व्यक्ति आके चुनाव भी लड़ लेगा, वो खुद ही आ जाएगा, उसमें आपको बोलने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, खुद चीज़ें बनने लगेंगी, डेवलप होंगी। दिल्ली के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति थे, केजरीवाल जब पहली बार लड़ा था, हम दूसरी बार का नहीं कह सकते हैं, फर्स्ट टाइम, आपको जान के हैरत होगी, आदमी ही नहीं मिल रहा था चुनाव किसे लड़ाएं। तो ये हमसे पूछते थे यार कैसे, हम बोले आप समझे नहीं, वातावरण ऐसा बन गया है कि आपके यहाँ जो टाइप करने वाला व्यक्ति और जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति है, ये भी चुनाव लड़ेगा तो जीत जाएगा। तो बोले ये कैसे हो सकता है, और वो जीत गया।
एक चीज़ समझनी चाहिए कि NDTV लड़ाई लड़ रहा है, रवीश NDTV में काम करते हैं, लड़ाई NDTV लड़ रहा है। हमारा संस्थान भी खड़ा अगर हो जाता तो सरकार की बैंड बज जाती। किया जा रहा था उसे कहा, लेकिन वो संस्थान लड़ाई लड़ा, समझे नहीं। हमारा ये कहना है कि अगर हम NDTV में काम कर रहे होते, जो पहले मान लीजिए किया करते थे, तो NDTV चलाने वाले प्रणव राय बेसिकली जर्नलिस्ट ही हैं। तो जर्नलिस्ट जब लड़ाई लड़ता है तो आप संस्थान लड़ाई लड़ रहा होता है, उसमें ABCD वो महत्व नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग के लिए मुश्किल ये है कि हम लोग ऐसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं जिसका एक इकोनॉमिक मॉडल है, और वो हो सकता है हमको निकालने की एवज में या हमारे जाने की एवज में या डिस्टरबेंस की एवज में सौदा हुआ हो, क्या पता कर लिया उसका इकोनॉमिक मॉडल फिट बैठता हो।
कुछ लोग टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि आज जितने राजनीतिक दल हैं उतने ही मीडिया हाउसेस हैं, और जितने राजनेता हैं उतने मीडिया कर्मी। जनता के बीच इनका राजनीतिकरण कब और कैसे हो गया और इसका जिम्मेदार कौन है, ये विवेचना का हिस्सा जरूर हो सकता है, मगर लांछन से अछूता कोई नहीं है। ABC मीडिया हाउस XYZ राजनीतिक दल का समर्थक, AB पत्रकार CBA राजनीतिक दल का समर्थक, इसी तरह इनका विभाजन होता गया और अंत में कोई भी पत्रकार जनता और समाज या देश का पत्रकार कहलाने की स्थिति में नहीं रहा। यह भी एक विचित्र स्थिति है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार तो बहुत दिनों से लोगों को ये सलाह देते हैं कि वो TV देखना बंद कर दें। अलबत्ता ये उनका व्यंग है। उनका कहना है कि TV आज जनता से पूरी तरह अलग हो गया है और किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है। रवीश कुमार महिला पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या की घटना के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और मीडिया ने उसमें जो रवैया अपनाया, उस पर बहुत आहत दिखाई दिए।
मीडिया तो समाप्त हो गया है, चमचे बचे हैं से जो रोज रात को एंकरिंग करते हैं। पहले जो चमचे होते थे वो छुप के काम करते थे, अब होते हैं टाई कोट पहन के 9 बजे आ जाते हैं उनका एजेंडा लेके और वही करते हैं। आप मानिए या नहीं मानिए, ये जो न्यूज एंकर है ना, ये आज के ये बाहुबली हैं। इनको सरकार ने भले ना नियुक्त किया हो, लेकिन ये अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि हम सरकार के गुंडे हैं, हम जो चाहेंगे वही करेंगे इस देश में। तो लोग कारण निकाल रहा है, ये कारण वो कारण, किसी ने नहीं देखा कि उनकी जर्नलिज्म क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, किसी ने नहीं देखा। और वो गालियों का पूरा बौछार पड़ा हुआ मेरे टाइमलाइन में मैं देख रहा हूं कि भाई ये समाज में लोग कहां गए। किसी के मरने के बाद आदमी चुप हो जाते थे, ये क्या कर रहे हैं ये लोग बैठ के। तो ये जो पॉलिटिकल कल्चर वो हमको दे रहे हैं एक फ्लाईओवर और 4 मेट्रो के बदले, वो तो पहले भी था, हमने इन्वेंट किया है क्या मेट्रो? ये भी तो नहीं है कि वो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ट्रांसपोर्ट मॉडल है, वो भी तो नहीं है ना, वो भी नहीं है। तो हमने तो इन्वेंट नहीं किया ना, सड़क हाईवे हमने इन्वेंट किया है। तो उसके बदले में आप क्या पॉलिटिकल कल्चर आप हमें दे रहे हैं? मतलब शर्म आनी चाहिए ना इस देश में कि एक औरत को जाकर वो इस एज तक वो लड़ रही हैं, लिख रही हैं, जाके मार दिया। तो आप पता कीजिए, आपको अगर इसी बात से खुशी मिलती है तो सिद्धारमैया का इस्तीफा लीजिए, लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ वही करना है तो वही करना चाहिए, लेकिन इस तरह की हत्याएं तो दूसरे राजनीतिक दलों के राज्य में भी हो रही है। तो सरकार से आप कब तक जोड़ते रहेंगे? आप जोड़िए जरूर सरकार से, लेकिन ये जो विचारधारा खड़ी हुई है उनकी हत्या के बाद, ये भी तो कोई सरकार बना रही है ना, या किसी सरकार के साथ खड़ी है? कुछ मालूम नहीं है। देखिए कलबुर्गी का भी इन्होंने कुछ नहीं पता लगाया सिद्धारमैया ने, उसके पहले उसी इलाके में एक DSP की मौत हुई, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको CBI से जांच कराओ, कल ही कहा है। तो जब ये पुलिस अपने ऑफिसर के मर्डर का या सुसाइड की जांच नहीं कर सकती है तो ये दूसरों को क्या करेगी? इसको तो आदत है, इसको आदत है कि ये 4 दिन के लिए जमा हुए हैं, लिखे हैं। फिर इसका मतलब अगर ये जैसे बढ़ेगा, आप याद रखिएगा, एक नया इवेंट आएगा, बड़ा इवेंट जिसका कोई सिंबल बहुत बड़ा होगा, जिसका एनालिसिस होगा कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ, जैसे पहली बार रक्षा मंत्री बन गई, ये नया इवेंट आएगा। और उसी हफ्ते हम देख रहे हैं कि एक महिला संपादक की हत्या भी हो रही है, क्या करें? और उसी हफ्ते उसी हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि जिन दो औरतों की वजह से ये राम रहीम का गुंडों का साम्राज्य खत्म हुआ, उसके लिए इस देश के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे आदमी ने उसकी शाबाशी नहीं की है। आपने सुना है, आपके पास कोई कोर्ट है महिला आयोग की अध्यक्ष का, महिला विकास मंत्री इतने राज्यों में होती है, उनका कोई कोर्ट है कि इन दो महिलाओं ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी है, हम इनको बधाई देते हैं, यही हमारी आज की महिलाएं हैं? किसी बड़े मंत्री संतरी महासचिव पार्टी अध्यक्ष किसी का भी बयान आपने देखा है? सब चुप है, क्योंकि इस देश में औरत के मारे जाने पे कोई अफसोस नहीं करता है।
टीकाकार मानते हैं कि मुख्य धारा के मीडिया का जब से नागरिकों की नज़र में राजनीतिकरण हुआ और इनका गुटों में विभाजन, सामाजिक पत्रकारिता का दायरा और महत्व बढ़ने लगा और मुख्य धारा की पत्रकारिता भी इससे जुड़ने लगी और अब तो लगभग सभी जाने माने पत्रकारों का कम से कम एक अकाउंट तो सामाजिक पत्रकारिता में किसी न किसी रूप में मौजूद है, ये एक अच्छा साधन भी है लोगों की राय जानने का। ये चिंता जताई जाती है कि राजनीतिक दल और कॉरपोरेट मीडिया हाउसेस को नियंत्रित करने लगे हैं और संपादकों तथा पत्रकारों पर कड़ी नज़र रखते हैं। ऐसे में कुछ पत्रकार साहस दिखाते हुए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और वहां जाकर अपनी बात आज़ादी से कहना चाहते हैं। इन पत्रकारों में एक बड़ा नाम अभिसार शर्मा का है। अभिसार शर्मा केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के त्यागपत्र के मामले में मीडिया कवरेज पर तीखी टिप्पणी करते हैं।
एमजे अकबर का इस्तीफा हो गया है और गोदी मीडिया यानी कि बीजेपी की चाटुकार मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपाना शुरू कर दिया है और इसके जरिए वो कहीं ना कहीं ये जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एमजे अकबर तो इस्तीफा नहीं देना चाहते थे मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर दबाव डाला जिसके चलते एमजे अकबर को इस्तीफा देना पड़ा। मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि ये गलत है, सरासर गलत है और न सिर्फ गलत है बल्कि जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो आपके होश उड़ा देगी। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, अगर वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमजे अकबर के इस्तीफों को लेकर गंभीर थे तो इस वक्त जो विदेशी यात्रा पर थे एमजे अकबर, उन्हें विदेशी यात्रा बीच में रोककर उन्हें बुलाया जाना चाहिए था मगर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ।
अभिसार शर्मा दूसरे भी अनेक मुद्दों पर अपने विचार रखते रहते हैं और मीडिया पर टिप्पणी भी करते रहते हैं। टीकाकार जाने अनजाने माने या ना माने फेसबुक और ट्विटर देश की राजनीति का लोकसभा और राज्यसभा भी है और राजनीति का अखाड़ा भी। यहाँ पर जो प्रतिक्रिया लोगों द्वारा व्यक्त की जाती है वो सभ्य समाज और असभ्य समाज की तरफ इशारा तो करती है, जो एक दूसरे को गाली देने के साथ साथ निशाने पर पत्रकार और राजनेता भी इस संस्कृति से अछूते नहीं रह पाए हैं। ये कुछ लोगों का विचार है। मीडिया की पेशावराना निष्पक्षता के बारे में हमेशा सवाल उठते रहे हैं, जबकि इसी बीच कुछ मीडिया संस्थाओं और कुछ पत्रकारों ने अपने कामकाज से निष्पक्षता का प्रदर्शन भी किया है। यदि मीडिया संस्थानों की विश्वसनीयता बनी रहती है तो दीर्घकाल में इससे राष्ट्र का हित होता है और यदि उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है तो अंततः इसका नुकसान सबको झेलना पड़ता है।